नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश।
और मैं हूं आकाश। हम दोनों एक बार फिर हाजिर हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम करियर अड्डा में।
दोस्तों, इन दिनों करियर अड्डा में अखंड भारत की यात्रा आ पहुंची है देश के उन क्रांतिकारियों तक जिनके बलिदान के सामने हम सब आज भी नतमस्तक हैं।
हाँ दिनेश, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आज हम अपने देश में वोट डालते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं और आजादी से सांस ले रहे हैं। वो सब इन्हीं क्रांतिकारियों की बलिदान का ही तो नतीजा है।
बिल्कुल। तो दोस्तों, देश में जहां एक ओर महात्मा गांधी जैसे अहिंसावादी नेता अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ठीक उसी समय पर देश के एक हिस्से में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारियों का संगठन तैयार हो रहा था, जिसने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को एक मंच दिया, जहां से वे एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ उन्हीं की जुबान में जवाब देने की तैयारी कर रहे थे।
दोस्तों, इन क्रांतिकारियों की सूची और उनके साहस के किस्से बहुत लंबे हैं, इसलिए हम आज आपको सबसे पहले भगत सिंह के जीवन और उनके साहसिक कारनामों के बारे में बताने जा रहे हैं।
साथियों, ये बात है उन दिनों की जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाएं नहीं थी। तब 28 सितंबर 1907 में सिख जाट परिवार में भगत सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता किशन सिंह बेहद साधारण व्यक्ति थे और माँ विद्यावती कौर अपने परिवार की जिम्मेदार महिला। उन्होंने भगत सिंह को बहुत अच्छी परवरिश दी। लोगों का आदर और देश के प्रति सम्मान की भावना परिवार की ही देन थी।
अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने उनके जीवन पर बहुत गहरा असर डाला और यहीं से उनके भीतर देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने का जज्बा पैदा हुआ। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। इसके बाद उनकी मुलाकात चंद्रशेखर आजाद से हुई, जो ठीक उनकी ही तरह अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की कोशिश में थे। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ उनकी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन कर ली।
बाद में इस संगठन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इस संगठन का उद्देश्य सेवा, त्याग और पीड़ा झेल सकने वाले नवयुवक तैयार करना था। इसी दौरान भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर पहली बार एक हिंसक वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मार गिराया।
दोस्तों, वैसे तो भगत सिंह रक्तपात के पक्षधर नहीं थे और वामपंथी विचारधारा को मानते थे, लेकिन उन दिनों देश के हालातों ने उन्हें कई खतरनाक कदम उठाने पर मजबूर किया। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने दिल्ली में ब्रिटिश भारत के तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को एक सुनियोजित हमला किया। इस हमले में उन्होंने एक ऐसा बम फेंका जिससे केवल आवाज ही हो सकती थी, और हुआ भी ऐसा ही। इसके बाद दोनों क्रांतिकारियों ने सभा में भारत की आजादी के पर्चे भी फेंके।
दोस्तों, उन दोनों क्रांतिकारियों के पास इतना वक्त था कि वे वहां से भाग सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भगत सिंह ने खुद को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह को ब्रिटिश दंड संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPC की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध कर दिया। 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 प्रश्नों का निर्णय दिया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई।
इस फैसले से पूरे देश में आक्रोश का माहौल बन गया। लाहौर में धारा 144 लगा दी गई। हालांकि देश के नेताओं ने भगत सिंह को फांसी से बचाने की बहुत कोशिश की। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष पंडित मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सजा माफी के लिए 14 फरवरी 1931 को अपील दायर की। महात्मा गांधी ने 17 फरवरी 1931 को वायसराय से बात की। फिर 18 फरवरी 1931 को आम जनता की ओर से भी वायसराय के सामने सजा माफी की बात कही, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी एक न सुनी। हालांकि भगत सिंह भी खुद नहीं चाहते थे कि कोई उनकी सजा माफी की कोशिश करे।
आखिरकार 23 मार्च 1931 को शाम में करीब 7 बजकर 33 मिनट पर भगत सिंह और उनके दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और उसे पूरी करने का समय दिया जाए। इस तरह एक क्रांतिकारी ने अपने देश के नौजवानों के भीतर आजादी की लौ जलाने के लिए अपना जीवन त्याग दिया।
दोस्तों, हालांकि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसे और भी कई किस्से हैं हमारे पास जिन्हें सुनने के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। साथ ही अगर आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो फोन में अभी नंबर 3 दबाएं।
नमस्कार।